الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الاعلیٰ سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ سورۃ الاعلیٰ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں ایک رکوع اور 19 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعے کی نماز میں اکثر و بیشتر یہ سورۃ تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور اسی طرح وتر کی پہلی رکعت میں بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام یہ سورت پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سورت سبح اسم ربک الاعلیٰ سے محبت فرماتے تھے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبوب سورت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو جو سب سے بلند ہے۔ اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کا وصف ہے۔ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے اپنے سجدے میں داخل کر لو۔ اسی لیے ہم سجدے کے اندر جو تسبیح پڑھتے ہیں وہ ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ آگے فرمایا الذی خلق فسوا، جس نے پیدا کر کے ٹھیک بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق کا بیان ہے، اور آگے بھی اسی کے متعلقات کا مزید بیان ہے۔ فرمایا والذی قدر فہدا، اور جس نے اندازے پر رکھا پھر راہ دکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہترین اندازے سے پیدا فرمایا اور اس کے لیے رہنمائی کے اسباب پیدا فرما دیے، ہدایت دی، رہنمائی فرمائی، یعنی اس کے لیے رہنمائی کے، ہدایت کے اسباب پیدا کر دیے کہ اب جو ہدایت حاصل کرنا چاہے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی مزید شان تخلیق اور قدرت کا بیان فرمایا، فرمایا والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى، اور جس نے چارہ نکالا پھر اسے خشک سیاہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی خوراک کے لیے چارہ پیدا فرمایا، اور وہی چارہ جو پہلے لہلہاتا، سبز، خوبصورت، آنکھوں کو اچھا لگنے والا ہوتا ہے، وہی جانوروں کے کھانے کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد گل سڑ کر خشک سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب کوئی اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ ہریالی، سبزہ، گرینری انسان کو طبعی طور پہ بڑی پسند ہے۔ انسان کو وہ جگہ بڑی خوبصورت لگتی ہے جہاں سبزہ ہی سبزہ ہو، آنکھوں کو فرحت دیتا ہے، تازگی کا احساس دیتا ہے۔ لیکن وہی سبزہ جب خشک ہو جاتا ہے اور کالا سیاہ ہو کے تنکوں میں بکھر جاتا ہے، اب وہ دیکھنے کے لائق نہیں ہوتا۔ مفسرین نے یہاں ایک بڑا خوبصورت نقطہ بیان فرمایا، فرمایا کہ زندگی بھی ایسے ہی ہے، زندگی بھی ایسے ہی ہے۔ بڑا مزہ آتا ہے زندگی میں، بڑی خوشگوار لگتی ہے، بڑا انجوائے کرتا ہے، ہر وقت آدمی کو دل کرتا ہے مستیوں میں رہے، موجوں میں رہے، بڑا انجوائے کرے۔ لیکن جب وہی انسان فنا کے گھاٹ اتر جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اب اس کو گھر میں رکھنا گوارا نہیں کرتا۔ اب کہتے ہیں یار اس کو دفنا دو، جو جلاتے ہیں وہ کہتے ہیں جلا دو، جو کچھ اور کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کچھ اور کر دو، لیکن اس کو لے جاؤ۔ تو زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ پہلے تو بڑی خوشگوار ہے، اب اس خوشگوار کو آئندہ بھی خوشگوار رکھنا ہے تو پھر ایمان اور اعمال صالحہ، نیک اعمال، ورنہ پھر یہ زندگی جو ہے یہ تو بڑھاپے کا شکار ہو کے بندہ موت کے گھاٹ اتر ہی جاتا ہے، اور اس کی ساری سرسبزی، شادابی، تازگی، فریشنس سب ختم ہو جاتی ہے. آگے فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى. اے حبیب اب ہم تمہیں پڑھائیں گے تو تم نہ بھولو گے مگر جو اللہ چاہے, بے شک اللہ ہر کھلی اور چھپی بات جانتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل امین علیہ السلام سے جب قرآن سنتے تو فوراً دہراتے تاکہ بھول نہ جائیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے فرمایا کہ اے حبیب علیہ السلام اب ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے, آپ کبھی بھولیں گے نہیں. ہاں جو اللہ منسوخ فرما دے گا اور منسوخ فرمانے کے ساتھ آپ کو بلانا چاہے گا وہ بلا دے گا, یا کبھی کبھار حکمت الہیہ سے نسیان اور سہو ہو جائے تو وہ ایک جدا چیز ہے. لیکن جو قرآن محفوظ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کا سارا آپ کے سینہ اقدس کے اندر محفوظ فرما دے گا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر مشقت کے سارا قرآن پاک یاد فرما لیا. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ بھی ہے, ورنہ قرآن پاک اتنی موٹی کتاب ہے 6,500 سے زیادہ آیتیں جس کے اندر, اور اسے بغیر دہرائے اور بغیر اس کا تکرار کیے یاد کر لینا یہ کوئی آسان کام نہیں. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا. آگے ارشاد فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى, اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے تو تم نصیحت فرماؤ اگر نصیحت فائدہ دے. ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے, اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم آپ کے لیے قرآن کا یاد رکھنا آسان کر دیں گے, اور ایک اس کا معنی یہ ہے کہ ہم آپ کو ایسے اعمال کی توفیق دیں گے جو قرب خداوندی کا راستہ آسان کرنے والا ہے. نیکیاں اور خدا کی پسند کے اعمال کرنا. تو فرمایا کہ یہ جو قرآن نازل ہوا تم اس کے ذریعے نصیحت کرو اگر نصیحت فائدہ دے. اگر کا لفظ اس معنی میں نہیں ہے کہ اگر نصیحت فائدہ نہ دے تو نصیحت نہ کرو, یہ بطور شرط کے نہیں ہے, یہ ایک قرآن پاک کا اسلوب ہے, یہ اس اعتبار سے ہے, اور ہر جگہ پر لفظ اگر جو ہے وہ بطور شرط کے نہیں ہوتا. اور پھر قرآن پاک کی آیات کا یوں مفہوم مخالف بھی معتبر نہیں, یہ اہل علم کے اعتبار سے میں نے ایک نقطہ عرض کر دیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى. عن قریب نصیحت مانے گا وہ جو ڈرتا ہے, اور نصیحت سے دور رہے گا وہ جو بڑا بدبخت ہے, جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا, پھر وہ اس آگ میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا. فرمایا کہ یہ جو قرآن نصیحت ہے اس نصیحت کو وہ مانے گا جس کے دل میں خدا کا ڈر ہوگا, اور اس نصیحت سے دور وہ ہوگا جو بڑا بدبخت ہوگا, جو سب سے بڑی آگ میں جانے والا ہے, اور وہ آگ ایسی ہے کہ نہ تو بندہ اس میں مرے گا کہ جان چھوٹ جائے, اور نہ جیے گا کہ زندگی کا سکون ملے. تو قرآن پاک سے جس کو نصیحت حاصل ہو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں خدا کا ڈر موجود ہے, اور جسے قرآن سن کے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سمجھ کے پھر بھی نہ نیکی کی توفیق نہ ایمان کی قوت ملے نہ گناہوں سے اسے بچنا نصیب ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل سخت ہے, اور اس کے دل کے اندر خدا کا ڈر بہت تھوڑا سا ایمانیات والا ڈر اس کے دل میں موجود ہے, لیکن جیسا ڈر مطلوب ہے اعلیٰ درجے کا وہ اس کے دل کے اندر موجود نہیں ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى, بے شک جس نے خود کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا, اور اس نے اپنے رب کا نام لیا پھر نماز پڑھی. فلاح پا گیا کون؟ جس نے خود کو پاک کر لیا, جس نے اپنے دل و دماغ کو پاک کر لیا, जिसने कुफ्रो शिर्क की नजासत को दूर कर दिया, बद अखलाकी और बद आमाली की आलूदगियों से अपने आप को पाक कर ली, दिल साफ है, नफ्स को सुथरा कर लिया, तज़किया नफ्स कर लिया, फरमाया वो बंदा कामयाब हो गया। तो कामयाबी जो है वो अल्लाह ताला फरमाता है उसके लिए है जो अपने आप को पाक कर ले बुरे अखलाक से, बुरे अकायद से, बुरे ख्यालात से, कसदन अपने दिल में ख्याल ना लाए, तो ऐसा बंदा फला पा गया। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि जो अक्सर लोगों की हालत है ख़ास तौर पे कुफार की, फरमाया कि बल तुसिरून अलहयात दुनिया वल आखिरत खैरुन व अबका इन हाजा लफिस सुहफिल ऊला सुहफि इब्राहीम व मूसा, बल्कि तुम दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते हो और आखिरत बेहतर और बाकी रहने वाली है। बेशक ये बात जरूर अगले सहीफों में है, इब्राहीम और मूसा के सहीफों में। अल्लाह ताला फरमाता है कि हकीकत वही है कि जिसने खुद अपने नफ्स को पाक कर लिया, अपनी रूह को पाक कर लिया, दिल को पाक कर लिया, वो फला पा गया, वो कामयाब हो गया। लेकिन माजरा ये है कि तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो। दिल को पाक करना, अखलाक अच्छे करना, किरदार अच्छा करना, तकवा परहेजगारी इख्तियार करना, इस तरफ तुम्हारी तवज्जो नहीं जाती, दुनिया कमाने की तरफ तवज्जो जाती, दुनिया को तरजीह देने की तरफ तवज्जो जाती। कुफार ने तो यूं तरजीह दी कि आखिरत का इनकार ही कर दिया और असलन ही नहीं माना और असलन फरामोश कर दिया। लेकिन मोमिनों के अंदर भी बहुत सारों की हालत अच्छी नहीं। हमारे जमाने में जो दुनिया के पीछे हलाल हराम की परवाह छोड़ने वाले, तो अब क्या समझते हैं आखिरत को तरजीह दे रहे। जो बंदा हलाल हराम की कोई परवाह नहीं करता, ना उसे बदनिगाही करने से डर आता है, ना उसे बदकारी करने से डर आता है, ना उसको शराब पीने से डर आता है, ना उसको नमाजें छोड़ने से कोई डर आता है, ना उसे रिश्वत लेने से डर आता है, ना उसे जुल्म करने से डर आता है, ना उसे कत्ल करने से डर आता है, ना उसको जो है वो धोखा देने, खयानत करने और डंडी मार के माल बेचने से डर आता है, तो आपके ख्याल में इसके दिल में आखिरत की मोहब्बत जमी हुई है? मेरा ख्याल है कि होशो हवास के अंदर तो कोई आदमी नहीं कह सकता कि इसके दिल में आखिरत की मोहब्बत है और ये दुनिया को तरजीह नहीं देता। ये तो दुनिया को तरजीह दे रहा है ना, इसने दुनिया को सब समझ लिया, आखिरत की किसने देखी है? दुनिया के अंदर हरामखोरी के अंदर नंबर वन बना हुआ। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि बेहतर तो आखिरत है और वो बाकी रहने वाली है, तुम तो दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बेहतर भी है और हमेशा बाकी रहने वाली भी, हमेशा बाकी रहने वाली भी। और फरमाया कि ये बात वो है जो अल्लाह ताला ने पिछली किताबों के अंदर भी लिखी थी। पिछली किताबें कौन सी? फरमाया इब्राहिम और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफों के अंदर, उनकी किताबों में अल्लाह ताला ने ये बात लिखी थी कि आखिरत ही बेहतर है, वही बाकी रहने वाले, लिहाजा उसको तरजीह दो, दुनिया को तरजीह ना दो। अल्लाह ताला हमारे दिलों के अंदर आखिरत की मोहब्बत पैदा फरमाए। इसके बाद सूरह गाशिया शुरू होती है। सूरह गाशिया मक्का मुकरमा में नासिल हुई। इसमें एक रुकू और 26 आयतें हैं। गाशिया का मतलब है छा जाने वाली। ये भी क्यामत के नामों में से एक नाम है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम जुमे की नमाज में सूरह गाशिया की तिलावत फरमाया करते थे। इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल अता का हदीसुल गाशिया, बेशक तुम्हारे पास छा जाने वाली मुसीबत की खबर आ चुकी। वो कौन सी मुसीबत है? क्यामत, जो छा जाएगी, जो सब कुछ सारी हौलाकियां उसकी शिद्दत इंसानों पे छा जाएंगी, तुम्हारे पास उसकी खबर आ चुकी। और उस दिन क्या होगा? फरमाया वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया, बहुत से चेहरे उस दिन जलीलो रुसवा होंगे, काम करने वाले, मशक्कतें बर्दाश्त करने वाले भड़कती आग में दाखिल होंगे। क्यामत के दिन बहुत से चेहरे रुसवा होंगे और इन्होंने दुनिया में काम तो किए होंगे, अपनी तरफ से इन्होंने अच्छे काम किए होंगे, लेकिन कुफ्र के साथ, काफिर था और फिर खाना काबा की खिदमत भी करता था, मस्जिद हराम शरीफ की खिदमत भी करता था। जैसे कुफारे मक्का को उसी पे नाज था ना कि हम तो जनाब, हम तो हरम के खादिम हैं, हम तो जो है खाना काबा की जो है वो सफाई सुथराई करते हैं, हम तो यहाँ पर पानी फराहम करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है ईमान के बगैर मोतबर नहीं। तो फरमाया कि दुनिया में अमल तो करेंगे लेकिन क्यामत के दिन फिर भी मुशक्कतें झेल रहे होंगे। तुस्का मिन आइनिन आनिया लैसा लहुम तुआमुन इल्ला मिन दरीउ ला युस्मिनु वला युग्नी मिन जूअ। उन्हें शदीद गर्म चश्मे से पिलाया जाएगा, उनके लिए कांटेदार घास के सिवा कोई खाना नहीं, जो ना मोटा करेगा और ना भूख से नजात देगा। जहन्नमियों को, जो काफिर हैं, शदीद गर्म चश्मे से पिलाया जाएगा, पानी में शदीद गर्म पानी और खाने में वो कांटेदार घास कि जो गले से उतरे तो गला छील दे, अंदर जाए तो जाके आग लगा ले। और फरमाया कि ऐसा खाना ना तो फरबा करता है ना भूख से निजात देता है। आदमी खाना क्यों खाता? ताकि सेहत बने, ताकत बने और उसकी भूख दूर हो जाए। लेकिन जहन्नम का खाना ना सेहत देगा और ना भूख दूर करेगा। ये तो है कुफार। अब इसके मुकाबले में जो जन्नती हैं, जो ईमान वाले हैं, अल्लाह ताला उनका बयान फरमाता है। फरमाया वजूह हुई यौमइज़िन नाइमा लिसअयहा राबिया फी जन्नतिन आलिया ला तस्मउ फीहा लागिया फीहा ऐनुन जारिया फीहा सुरुरुम मरफूआ व अकवाबुम मौदूआ व नमारिकु मसफूफा व ज़राबियु मबसूसा। सुभान अल्लाह। फरमाया बहुत से चेहरे उस दिन चैन से होंगे, अपनी कोशिश पर राजी होंगे, बुलंद बाग में, उस बाग में कोई बेहुदा बात ना सुनेंगे, उसमें जारी चश्मे होंगे, उसमें बुलंद तख्त होंगे और रखे हुए गलास होंगे और सफ दर सफ गाओ तकिए लगे हुए होंगे और उम्दा कालीन बिछे हुए होंगे। ये जन्नत का मंजर है जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि जो ईमान वाला है, अच्छे आमाल वाला है, नमाज पढ़ने वाला, तिलावत करने वाला, जिक्रुल्ला करने वाला, आका करीम अलैहिस्सलाम पे दुरूद पढ़ने वाला, दूसरों का भला करने वाला, माँ बाप की खिदमत करने वाला, फरमाया कि ये अपने इन इन कोशिशों पे राजी होगा, बड़ा खुश होगा। या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं नमाजें पढ़ता था, या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं रमजान के रोजे रखता था, या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं कुरान पाक की तिलावत किया करता था, मैं जिक्रुल्ला करता था, मैं कलिमा पढ़ता था, मैं दुरूद पढ़ता था, मैं दूसरों का भला करता था, मैं गरीबों की मदद करता था, माँ बाप की खिदमत करता था, रिश्तेदारों से अच्छे अंदाज में मिलता था। या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं ये काम करता था, आज मैं अपने इन कामों पर बड़ा खुश हूं। और उसका सिला सुबहान अल्लाह बुलंद बागों के अंदर, और बाग के अंदर वो माहौल नहीं जो दुनिया के अंदर है कि बागों में जाएं तो फुल्लड़बाजी, फजूल गोई, बेहुदा गुफ्तगू, नहीं। फरमाया कोई बेहुदा गुफ्तगू नहीं होगी, वहाँ पर चश्मे जारी हैं, बुलंद तख्त हैं और बेहतरीन किस्म के गिलास वहाँ पर मशरूब के लिए बिछे हुए बराबर कालीन हैं और एक बड़ा खूबसूरत तकिए लगे हुए कालीनों के ऊपर बैठे हुए मज़े से। सुबहान अल्लाह। अब आगे अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला की तख्लीक में गौर करो। क्या लोग अल्लाह ताला की शाने कुदरत में गौर नहीं करते? क्या कायनात की चीज़ों को नहीं देखते? इसको देख के उनको पता चले कि खुदा कितनी अजमतों वाला, कैसी कुदरतों वाला है, और वो अपनी उसी कुदरत के साथ बंदों को दोबारा जिंदा करेगा और जन्नत जहन्नम का फैसला करेगा। फरमाए अफला यंज़ुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफ़िअत व इलल जिबाल कैफ नुसिबत व इलल अर्द कैफ सुतिहत। तो क्या लोग ऊंट को नहीं देखते कि कैसा बनाया गया है, और आसमान को कैसा ऊंचा किया गया है, और पहाड़ों की तरफ कैसे कायम किए गए हैं, और जमीन को कैसे बिछाई गई है? फरमाया लोग गौर तो करें। अल्लाह ताला की कुदरत की इतनी निशानियां हैं, इतनी निशानियां हैं कि आप यकीन करें कि एक मर्तबा जहन बना ले कि खुदा की कुदरतों के नज़ारे करने हैं, फिर आप निगाह ऊपर करेंगे तो आसमान की सूरत में खुदा की कुदरत नजर आएगी, आप जमीन को देखेंगे तो जमीन भी खुदा की कुदरत के तौर पर नजर आएगी, आप बुलंदो बाला पहाड़ों को देखेंगे वो भी खुदा की कुदरत के नज़ारे आपको करवा रहा होगा। आप अगर जानवर ऊंट की तरफ देखेंगे जिस पे अहले अरब सफर किया करते थे, तो वो ऊंट का वजूद भी खुदा की कुदरतों की दलील होगा। तो ये अल्लाह ताला की कुदरतों का नजारा करना हो तो सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया ना, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, वही अव्वल है, वही आखिर है, वही जाहिर है, वही बातिन। वो इतना जाहिर है, इतना जाहिर है कि जिस चीज को देखेंगे खुदा याद आएगा, जिस चीज को देखेंगे खुदा की कुदरतें याद आएंगी, पता चलेगा कि ये चीज बनी है तो इसका बनाने वाला भी, आसमान ऊपर तना हुआ है तो इसको तानने वाला भी है, जमीन बिछी हुई है तो इसको बिछाने वाला भी है, पहाड़ बुलंद हैं तो इसको बुलंदी देने वाला भी है, ये जानवर जमीन पे चल रहे हैं तो इनको पैदा करने वाला भी है। इतना जाहिर है, लेकिन इसके साथ इतना बातिन है, इतना पोशीदा है, इतना पोशीदा है कि हकीकत तक अक्ल की रसाई नहीं, पहुंच नहीं सकते। खुदा अज़्ज़ा वजल की हकीकत क्या है, उसकी कुदरतों के जो मज़ाहिर हैं, जो उसकी सिफात के मज़ाहिर हैं, उनको देख के हमें मारिफत नसीब होती है। आगे अल्लाह ताला फरमाता है, फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर। तो तुम नसीहत करो, तुम तो नसीहत करने वाले ही हो, तुम कुछ उन पर जबरदस्ती करने वाले नहीं हो। नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम को फरमाया गया कि आप इन कुफार को दावत दें, तौहीद की दावत दें, माने तो ठीक, नहीं माने तो इनको मजबूर करने का आपको नहीं कहा गया कि इनकी गर्दन पे तलवार रख के फरमाया कि नहीं पढ़ो कलिमा, ऐसा नहीं। हमें भी यही हुक्म, हमें भी किसी को मजबूर करके कलिमा पढ़ाने की इजाज़त नहीं है कि हम किसी के जनाब सर के ऊपर खड़े हो जाएं और उसका गला दबा के बोलो कि पढ़ कलिमा, नहीं। अल्लाह ताला गनी बेपरवाह है, उसने हमें फरमाया कि जो चाहे ईमान कबूल करे, जो नहीं चाहता ना करे। लिहाजा हमें भी जो अपना काम है हमारा, दीन की दावत देना, नेकी की दावत देना, हमें वो देनी चाहिए, उसके आगे कबूल करना ना करना ये सामने वाले की मर्जी। आगे फरमाया, इल्ला मन तवल्ला व कफर फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर इन इलैना इयाबहुम थुम्मा इन अलैना हिसाबहुम। हाँ, जिसने मुंह फेरा और कुफर किया तो उसे अल्लाह बहुत बड़ा अजाब देगा, बेशक हमारी ही तरफ उनका लौटना है, फिर बेशक हम पर ही उनका हिसाब लेना है। फरमाया, आपका काम था नसीहत करना, आप नसीहत करके फारिग। हाँ, अब जो इन ये मुंह फेरे बैठे हैं और कुफर करते हैं, तो फरमाया कि इनका मामला आसान नहीं है, इनको अल्लाह ताला बहुत बड़ा अजाब देगा। बहुत बड़ा अजाब कौन सा? जहन्नम का। कुफार के लिए मौत के वक्त भी अजाब है सख्ती, कब्र में भी अजाब है, क्यामत के दिन हिसाब किताब भी उनके हक में अजाब। लेकिन ये सब छोटे छोटे हैं, जो जहन्नम का अजाब है वो सबसे बड़ा है। तो यहां पर उसी का फरमाया, तो अल्लाह ताला उन्हें सबसे बड़ा अजाब देगा जो जहन्नम का अजाब है। इसके बाद सूरतुल फज्र शुरू होती है। सूरह फज्र मक्का मुकरमा में नाजिल हुई, इसमें एक रुकू और 30 आयतें हैं। फज्र का मतलब सुबह। इस सूरह मुबारका की इब्तिदा में ये लफ्ज मौजूद है, उसी मुनासबत से इसका नाम सूरतुल फज्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल फजरी वला यालिन आश्र, सुबह की कसम और 10 रातों की, सुबह की कसम और 10 रातों की। सुबह से मुराद कौन सी सुबह है और 10 रातें कौन सी हैं, इसके बारे में मुफस्सिरीन ने एक तो फरमाया कि सुबह से मुराद है यकुम मुहर्रम की सुबह, जिससे साल शुरू होता है, और या यकुम जुल हिज्जा, जो हज का महीना है, या ईद उल अज़हा की सुबह मुराद है कि जिस दिन कुर्बानी की जाती है और हाजी लोग जो है वो हज का अहम रुकन तवाफ़ु ज़ियारा अदा करते हैं, और बाद मुफस्सरी ने फरमाया कि हर सुबह ही मुराद है, क्योंकि हर सुबह जो है वो अल्लाह ताला की कुदरतों को जो है वो जाहिर करती है और अपने अंदर कुदरतों के नज़ारे समेटे हुए। 10 रातों से मुराद क्या है? 10 रातों की कसम, 10 रातों से मुराद जुलहिज्जा की इब्तदाई 10 रातें, और यह फरमाया मुहर्रम की इब्तदाई 10 रातें। तो ये इन रातों की बड़ी फजीलत है। हदीस मुबारक में ख़ास तौर पर जुलहिज्जा के जो इब्तदाई 10 दिन हैं, इनके बारे में फरमाया कि जो इन दिनों में जो अमल किया जाए अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद होता है। इतना किसी और दिन पसंद नहीं होता जितना इन दिनों के अंदर अल्लाह ताला को पसंद होता है। और दूसरी रिवायत के अंदर है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो ज़ुलहिज्जा के 10 दिन हैं, इनमें हर दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़ों के बराबर है। 10 ज़ुलहिज्जा उसमें शामिल नहीं है, 10 ज़ुलहिज्जा को तो जो है वो रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं होती, ईद का दिन होता है। और उससे जो पहला 9 तारीख का दिन है, 9 ज़ुलहिज्जा, इस दिन हाजियों के लिए रोज़ा ना रखना जो है वो सुन्नत है, वो रोज़ा ना रखें उस दिन। तो फरमाया कि इसका हर दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़ों के बराबर, और हर रात का क़याम लैलतुल क़द्र में क़याम के बराबर है। ज़ुलहिज्जा की रातों का क़याम, इब्तदाई 10 रातों का, हर रात का क़याम लैलतुल क़द्र के बराबर है। तो ये इसकी फजीलत है। और बाद में फरमाया कि 10 रातों से मुराद रमजानुल मुबारक की आखिरी अशरे की 10 रातें, क्योंकि ये जो आखिरी अशरे की रातें ये भी बड़ी फजीलत वाली है। लैलतुल कद्र इन्हीं रातों में आती है, आखिरी अशरे के अंदर। इतिकाफ जो किया जाता है क्यों करते हैं? लैलतुल कद्र की तलाश, और वो कब है? आखिरी अशरे में, आखिरी 10 रातों के अंदर। तो इस एतबार से ये भी फरमाया गया कि यहां पर जो रमजान की आखिरी 10 रातें हैं वो मुराद। आगे फरमाया वश्शफ़ वल वत्र वल लैल इज़ा यस्र, और जुफ्त और ताक की कसम और रात की कसम जब वो चल पड़े। जुफ्त से मुराद ज़ुलहिज्जा की 10 तारीख, जिस दिन हज के बहुत से अफ़ाल किए जाते हैं, और ताक से मुराद है ज़ुलहिज्जा की 9 तारीख, जिसमें मैदान अराफात में जमा हुआ जाता है। 9 को मैदान अराफात है और 10 को तवाफ़ ज़ियारा का वक्त शुरू हो जाता है। उसी दिन रमी भी की जाती है, कुर्बानी भी लोग करते हैं और हलक भी करवाते हैं, इहराम से फारिग भी होते हैं। तो ये जुफ्त और ताक से मुराद ये दिन है। और रात की कसम जब वो चल पड़े, चल पड़े से मुराद जब वो गुजरने लगे। रात से मुराद कौन सी रात है? इसके बारे में एक कॉल तो ये है कि इससे मुजदलिफा की रात मुराद है, जो 9 ज़ुलहिज्जा और 10 ज़ुलहिज्जा की दरमियानी रात है। 9 ज़ुलहिज्जा को अराफात के मैदान में हाजिर होते हैं, ग़ुरूब आफ्ताब के बाद वहाँ से चलते हैं मुजदलिफा, और रात फिर मुजदलिफा में गुजारते हैं। रात गुजारना सुन्नत है, और वहाँ का जो थोड़ा सा फजर का हिस्सा है वो वहाँ पर गुजारना वाजिब है। तो ये जो वकूफ़ मुजदलिफा है वो रात जो है उस रात की यहाँ पर उस रात की कसम यहाँ पर बयान की गई। और बाद में फरमाया कि इससे शब कद्र की रात मुराद, यानी शब कद्र मुराद है। और बाद में ये भी फरमाया कि हर रात ही मुराद है, हर रात की अल्लाह ताला ने कसम बयान फरमाया। अब ये सारी कसमों के साथ बात क्या की जा रही कि फजर की कसम और 10 रातों की कसम और जुफ्त की कसम और ताक की कसम और रात की कसम, इन सारी कसमों के साथ बयान ये किया जा रहा है कि इन सारी बातों की कसम है, ए काफिरों तुम पे खुदा का अजाब आना ही आना, तुम पे खुदा का अजाब आना ही आना। और ये जो मुकद्दर अल्फाज हैं ये असल में अगली आया से इसका मफहूम निकलता है। फरमाए हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र, क्या इस कसम में अक्लमंद के लिए कसम है? ये जो कसमें बयान की हैं क्या इनके अंदर अक्लमंद के लिए कसम है? अब आगे फरमाया अलम तरा कैफ़ फ़अला रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युखलक मिसलुहा फिल बिलाद, क्या तुमने ना देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया, कौम आद के साथ क्या किया? इरम के लोग सुतूनों जैसे कद वाले कि उन जैसा शहरों में पैदा ना हुआ। आद दो दो किस्म, दो आद हैं, एक आदे उला एक आदे सानिया, आदे उखरा। आदे उला यहां पर मुराद है इनके बड़े लंबे लंबे कद थे, इस कौम के बड़े लंबे लंबे कद थे और बड़े मजबूत जिस्म थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या तूने देखा कि तेरे रब ने आद वालों के साथ किया क्या? इरम शहर के रहने वाले थे, लंबे लंबे कद वाले थे, सुतूनों जैसे कद थे, उन जैसा शहरों में पैदा नहीं हुआ, इतने जानदार और इतने जो है वो ताकत वाले। और यही वो आद है जिसमें वो शद्दाद बादशाह गुजरा, जिसने सोने का शहर बनाया था, वो भी इसी आद का था। आगे फरमाए व समूद लदीन जाबु सखर बिल वाद व फिरऔन ज़िल औताद। और क्या तूने ना देखा कि तेरे रब ने समूद के साथ क्या किया, जिन्होंने वादी में पत्थर की चट्टाने काटी, और फिरौन के साथ क्या किया जो मेघों वाला था। समूद हजरत साले अलैहिस्सलाम की कौम, पत्थरों के अंदर घर बनाते थे, इतने माहिर और इतने ताकतवर थे। और फिरौन के जिसकी सल्तनत जो है मजबूत गड़ी हुई थी जमीन के अंदर, या जो मेखों में बांध के लोगों को सजा देता था। फरमाया क्या तूने देखा कि तेरे रब ने इन लोगों के साथ क्या किया, ये करते क्या थे? फरमाया अल्लदीना तगौ फिल बिलाद फअक्सरु फीहल फसाद फसब्बा अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब। जिन्होंने शहरों में सरकशी की फिर उनमें फसाद फैलाया, तो उन पर तुम्हारे रब ने अजाब का कोड़ा बरसाया। इन्होंने जमीन में फसाद किया, सरकशी की, जराइम देखें, सरकशी की और फसाद फैलाया, तो फिर खुदा ने इन पे अजाब का कोड़ा बरसाया और इनको तहस नहस कर दिया, तबाहो बर्बाद कर दिया। फरमाया इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, बेशक तुम्हारा रब यकीनन देख रहा है कौन फरमा बरदार है और कौन सरकश है, तुम्हारा रब देख रहा है। अब आगे अल्लाह ताला ने इंसान की एक आदत और उसके एक मिजाज का बयान किया जो मजमूम है, उसका बयान किया। फरमाया फअम्मल इंसानु इज़ा मबतलाहु रब्बुहु फअकरमहु व नअमहु फयकूलु रब्बी अकरमन वअम्मा इज़ा मबतलाहु फक़दर अलैहि रिज़्क़हु फयकूलु रब्बी अहानन। तो बहरहाल आदमी को जब उसका रब आजमाए, तो बहरहाल आदमी को जब उसका रब आजमाए कि उसको इज्जत और नेमत दे, तो उस वक्त आदमी कहता है कि मेरे रब ने मुझे इज्जत दी। और बहरहाल जब अल्लाह बंदे को आजमाए और उसका रिस्क उस पर तंग कर दे, तो कहता है कि मेरे रब ने मुझे जलील कर दिया। यानी खुदा नेमत देगा तो कहता है कि दुनिया में पैसा मिल गया, इसका मतलब है कि अल्लाह बड़ी इज्जत कर रहा है मेरी, और अगर दुनिया के अंदर उसे तंगी और तुरशी और तकलीफ आ गई, तो कहता है कि खुदा ने मुझे रुसवा कर दिया दुनिया के अंदर। बताना ये मकसूद है कि अल्लाह ताला ना तो पैसे इसलिए देता है कि अल्लाह उस बंदे से खुश है, और ना अल्लाह ताला गुर्बत इसलिए देता है कि खुदा उससे नाराज है। अल्लाह ताला तो दोनों के जरिए बंदे को आजमाता है, उसका इम्तिहान करता है, उसको देकर भी आजमाता है, उससे लेकर भी आजमाता है। देकर आजमाता है कि क्या करता है पैसे का, शराब की तरफ, बदकारी की तरफ, फिल्मों की तरफ, गुनाह की तरफ और नाजायज कामों की तरफ जाता है, या फिर खुदा की बंदगी में खर्च करता है, खुदा की इताअत में खर्च करता है और शुक्र करता है या नहीं करता, इन पैसों से इन नेमतों से शुक्र करता है या नहीं करता। और अल्लाह ताला बाज़ औक़ात गुर्बत के जरिए आजमाता है ताकि बंदे को देखे कि बंदे पे तंगी आए तो सब्र करता है और खुदा की रजा पे राजी रहता है, या शोर मचाता फिरता है, यार मैं तो लूटा गया, मैं तो मारा गया, पैसे नहीं है घर के अंदर, गुजारा ही नहीं होता, मर गया लूट गया, बस इसी ये शोर व वेला ये करता है। तो फरमाया कि अल्लाह ताला तो इसके जरिए आजमाता है, लेकिन बंदा ये समझ के बैठ जाता है कि पैसा आ गया तो इसका मतलब कि अल्लाह बड़ा खुश है मुझसे, तंगी आ गई तो यार अल्लाह नाराज है मुझसे, तभी मेरे ऊपर तकलीफ आ गई। और ये हाल, अफसोस की बात यह है कि आज के ज़माने में हमारे मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है, और ख़ास तौर पे ये जो सेकुलर और लिबरल टाइप के लोग हैं, कि यूरोप के और कुफार के ममालिक की तरक्की को हमें बता बता के ना हमें समझाते हैं, देखो अल्लाह कितना राजी है उनसे, खुदा ने कितना उनको दौलत से नवाजा, کتنی آسائش دی ہے، ان سے راضی ہے۔ اے مسلمانوں، خدا تم سے ناراض ہے، تم غریب ہو اور گھٹیا ہو اور یہ ہے وہ۔ ایسے سڑیل سڑیل لوگ جو ہے وہ آپ کو چینلز کے اوپر ملیں گے، اور آپ کو قلمکار ملیں گے، لکھنے والے ملیں گے، کہ جن کا دن رات کی جن کی دیہاڑی یہ ہے کہ سوائے اس کے کہ وہ جو ہے وہ غیر مسلموں کے قصیدے پڑھتے رہیں اور ان کی ترقی کے اوپر لمبے لمبے مضمون لکھتے رہیں، اور مسلمانوں کو ہر وقت لان تان ملامت اور تان و تشنی کرتے رہیں، اور ان کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتے رہیں اور کام بھی کرنی ہو۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہمیں ہمت دکھانی چاہیے، ہمیں بھی ترقی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس چیز کو آپ خدا کی بارگاہ میں پسند اور ناپسند کا معیار بنا لیں، یہ غلط ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمان غربت میں رہے، نہیں، مسلمان پیسے والا ہو، مسلمان کمائے کھائے کھلائے، مسلمان کمائے کھائے اور کھلائے، دوسروں کا بھلا کرے، اپنے اوپر خرچ کرے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، رہنے میں، منع نہیں کیا، حرام سے منع کیا، لیکن اس کو معیار نہ بنا لیا جائے کہ جس کے بعد پیسہ خدا اسے راضی۔ اگر پیسے والے سے خدا راضی ہے تو پھر دنیا کے اندر بڑے بڑے ڈاکوؤں سے تو خدا بڑا راضی ہوگا، بڑے بڑے چوروں سے، حرام خوروں سے، رشوت خوروں سے، سود خوروں سے، بینک چلانے والوں سے خدا بڑا راضی ہوگا، کیونکہ سارے سود کا نظام چلاتے ہیں۔ جتنے بڑے بڑے جو ہے وہ کمیشنیں لینے والے اور کمیشن لے کے چیزیں پاس کرنے والے اور رشوت کھانے والے اور یہ غاصب اور زمینوں پہ قبضے کرنے والے، اللہ تعالیٰ تو ان سے بڑا راضی ہوگا پھر، کیونکہ اتنا پیسہ ملا ہوگا۔ یہ معیار نہیں ہے۔ دنیا کا پیسہ، مال، دولت خدا کی بارگاہ میں رضا کا، راضی ہونے کا معیار نہیں ہے۔ معیار کیا ہے؟ ایمان اور اچھے اعمال۔ ایمان ہے، اچھے اعمال ہے، تو پھر غربت بھی ہے تو آپ یقین کیجئے تب بھی نعمت ہے۔ ایمان نہیں ہے تو پھر ساری دنیا کی دولت بھی مل جائے تو قارون کے برابر ہی ہو جائے گی نا، یا قارون سے بھی اوپر چلا جائے گا، تو کیا خدا قارون سے راضی تھا جس کے خزانوں کی چابیاں جو ہے اونٹوں کے اوپر لادی جاتی تھی، اتنے خزانے تھے اس کے، اتنے محل تھے خزانوں۔ تو لہذا دنیا کے مال و دولت کو معیار نہ بنایا جائے کہ خدا راضی ہے، خدا ناراض ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور تم ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ فرمایا تمہارا جرم یہ ہے کہ تم جو ہے وہ ایک دوسرے کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، اور آگے کیا، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور میراث کا سارا مال جمع کر کے کھا جاتے ہو اور مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو۔ یتیموں کا مال کھانے والے، فرمایا تمہارا جرم یہ ہے کہ تم یتیموں کا مال کھا جاتے ہو، مال کی محبت تمہارے دلوں کے اندر رچی بسی۔ تو فرمایا کہ مال آئے تو یہ والا طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے، مال کی ایسی محبت کہ یتیم کا مال بھی کھا گیا، بیواؤں کے فنڈ کھا جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسی مثال ہے نا کہ وہ سرکاری محکمے کے جس کے اندر یتیموں بیواؤں کے فنڈ ہوتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں، پینشن لینے والے بوڑھے 70 سال کے بوڑھے کو جیسا آفیسز کے اندر ذلیل کیا جاتا ہے اور اس کو دھکے کھلائے جاتے ہیں، اور جب تک وہ پیسے نہیں دے گا اس کی فائل نہیں آگے بڑھے گی۔ پہلے چپڑاسی حرام کھائے گا، اس کے بعد اگلا اس کا جو آفیسر ہے وہ حرام کھائے گا۔ اب کام کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ جی بڑے آفیسر کو ابھی تک پیسے نہیں دیے، اب وہ بڑے افسر کو حرام کچھ کھلائیں تو فائل آپ کے پاس ہوگی۔ نہ یتیم پہ رحم ہے، نہ بیوہ پہ رحم ہے، نہ بوڑھے پہ رحم ہے، نہ غریب پہ رحم ہے۔ یہ ظالم، فاسق، فاجر اور یہ حرام خور جو ہے یہ ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ ہمارا مال کھا جاتے ہیں۔ یہ ہیں وہ جن کو فرمایا کہ تم یتیم کا مال ہپ ہپ کر کے کھاتے ہو اور تم مال سے شدید محبت کرنے والے ہو، لیکن ایسوں کے پیٹ کے اندر وہ مال نہیں جاتا، جہنم کی آگ جاتی ہے۔ ایسوں کے منہ کے اندر جو ہے وہ تر نوالے نہیں جا رہے، ان کے منہ کے اندر یہ پزے اور جناب کباب اور رنگ برنگے جو ہے وہ آئٹمس اور ڈشز یہ نہیں جا رہی، یہ سب حرام کی جو ہے وہ جہنم کے انگارے ہیں جو ان کے منہ کے اندر جاتے ہیں، جو اپنے بیوی بچوں کے پیٹ کے اندر ڈالتے ہیں، یہ سب حرام کھاتے ہیں۔ और हराम खाते हैं और जहन्नम के अंगारे खाते हैं। अल्लाह ताला हमें जो है वो इससे महफूज फरमाए, और अल्लाह ताला इन लोगों को भी हिदायत अता फरमाए, यतीम पे रहम करें, बेवा पे रहम करें, बूढ़ों पे रहम करें। आगे अल्लाह ताला फरमाता है, कल्ला इदा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ्फन सफ्फा। हाँ हाँ, जब जमीन टकरा कर रेजा रेजा कर दी जाएगी और तुम्हारे रब का हुक्म आएगा और फरिश्ते कितार दर कितार आएंगे। وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي। और उस दिन जहन्नम लाई जाएगी, उस दिन आदमी सोचेगा और अब उसके लिए सोचने का वक्त कहाँ, क्यामत में सोचेगा, क्यामत में सोचने का वक्त कहाँ। वो कहेगा, ए काश कि मैंने अपनी जिंदगी में कोई नेकी आगे भेजी होती, लेकिन नहीं भेजी थी। और अब क्या होगा, फरमाया फयौमा इज़िल ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद वला यूफ़िकु वसाक़हु अहद। तो उस दिन अल्लाह के अजाब की तरह कोई अजाब नहीं देगा और खुदा के बांधने की तरह कोई ना बांधेगा। जैसे खुदा बांधेगा ऐसा कोई नहीं बांधेगा, और जैसा खुदा अजाब देगा ऐसा कोई अजाब नहीं देगा। यह है जहन्नमी। और जो ईमान वाला, तकवे वाला, खुदा से डरने वाला, खुदा की इबादत करने वाला, खुदा की याद में मगन रहने वाला, अल्लाह अकबर, उसका क्या होगा। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मरदिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ इस हाल में वापस आ कि तू अपने रब से राजी हो, वो तुझसे राजी हो। सुभान अल्लाह, क्या क्या निदा है, क्या कलाम है। ए इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ लौट आ इस हाल में कि तू उससे राजी, वो तुझसे राजी। फिर मेरे खास बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। अब आप गौर फरमा लें, वो जो पहले जहन्नमियों वाला तरीका है वो इख्तियार करना है, या ये निदा सुननी कि आ आ मेरे बंदों में आ जा, मेरी जन्नत में आ जा। ये भी कहा जाएगा, और वो भी है कि यतीमों का माल खाने वालों, लोगों का पैसा दबाने वालों, बेवाओं का पैसा खाने वालों, बूढ़ों का, पेंशनर्स का जो है उन पर जुल्म करने वालों, रिश्वत लेके उनके काम करने वालों, जाओ जहन्नम में। तो दोनों ऑप्शन हमारे सामने। अल्लाह तबारक व ताला हमें तौफीक की खैर अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।